लाउडेटर यीशुस क्रिस्टस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वेटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे धर्म शिक्षकों के लिए प्रार्थना करते हैं, जिन्हें ईश वचन की घोषणा करने के लिए बुलाया गया है, ताकि वे साहस एवं रचनात्मकता के साथ तथा पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से सुसमाचार के साक्षी बन सकें। आमीन।
नमस्कार श्रोताओ, आज प्रसारण में प्रस्तुत है पवित्र धर्म ग्रंथ बाइबल एक परिचय एवं साइप्रस और ग्रीस में संत पापा फ्रांसिस की प्रेरिति की यात्रा। प्रस्तोता है जूलियट क्रिस्टोफर और सिस्टर अनुग्रह मिंज।
पवित्र धर्मग्रंथ बाइबल एक परिचय कार्यक्रम के अंतर्गत इस समय हम बाइबल धर्मग्रंथ के प्राचीन व्यवस्थान में निहित सूक्ति ग्रंथ की व्याख्या में संलग्न हैं। यह ग्रंथ सभी मनुष्यों के लिए प्रज्ञा का आमंत्रण है। अपने ही कुंड का पानी पियो, अपने ही कुएं के बहते स्रोत से, क्यों तुम्हारे जल स्रोत घर के बाहर, तुम्हारी जलधाराएं सड़कों पर बहें? इन पर तुम्हारा अधिकार है, इनमें तुम्हारे साथ किसी पराये की साझेदारी नहीं। तुम्हारे जल स्रोत को आशीर्वाद प्राप्त हो। तुम अपनी युवावस्था की पत्नी, उस सुंदर हिरणी, उस रमणीय मृग से सुखी रहो। उसका प्रेम स्पर्श तुमको तृप्ति प्रदान करता रहे, उसका प्रेम तुमको मोहित करता रहे। ये थे सूक्ति ग्रंथ के पांचवें अध्याय के 15 से लेकर 19 तक के पद। विगत सप्ताह पवित्र धर्मग्रंथ बाइबल एक परिचय कार्यक्रम के अंतर्गत हमने इन्हीं पदों की व्याख्या की थी। श्रोताओ, यहां पुरुषों को स्मरण दिलाया गया है कि पत्नी ईश्वर द्वारा प्रदत्त वरदान है, इसलिए ईश्वर के वरदान के प्रति मनुष्य उदासीन नहीं रहे, अपितु प्रतिदिन उसका ध्यान कर ईश्वर के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता रहे। अपने ही कुंड का पानी पियो का अर्थ यही है कि जिस स्त्री के साथ पुरुष ने विवाह रचा है, उसी के प्रति वह निष्ठावान रहे और अपनी यौन तड़प को बुझाने के लिए यहां वहां न देखे। संत पॉल भी इब्रानियों को प्रेषित पत्र में सावधान करते हैं। पत्र के 13वें अध्याय के 4थे पद में संत पॉल लिखते हैं, आप लोगों में विवाह सम्मानित और दाम्पत्य जीवन अदूषित हो, क्योंकि ईश्वर लंपटों और व्यभिचारियों का न्याय करेगा। संत पॉल के लिए वैवाहिक जीवन एक निर्मल और स्वच्छ जल स्रोत है। श्रोताओ, प्राचीन हो या आधुनिक, एक अति यौन संस्कृति इस विचार को बढ़ावा देती है कि यौन संतुष्टि मुख्य रूप से एक शारीरिक अनुभूति है, जबकि यह धारणा एक भ्रामक विचार मात्र है। वस्तुतः परिपक्व दिमाग वाला व्यक्ति जानता है कि यौन संबंध की अंतरंगता में उदारता का भाव छुपा हुआ है, इसमें स्वागत और साझेदारी की भावना निहित है। बाइबल द्वारा प्रस्तावित यौन संबंधों की सीमाओं में रहकर व्यक्ति का यौन जीवन भी आरक्षित और सुरक्षित रहता है। उसे अपनी प्यास बुझाने के लिए वेश्या के घर के चक्कर नहीं लगाने पड़ते। उसका घर, उसकी पत्नी और उसके बच्चे ही उसके सुख और संतोष का कारण बनते हैं। अस्तु व्यक्ति अपनी यौन इच्छाओं का गुलाम नहीं बने, बल्कि यह स्मरण रखे कि सख्त निष्ठा कोई दुर्बल अलगाववाद नहीं है, बल्कि वैवाहिक निष्ठा और एक सच्चे परिवार के व्यक्तियों और प्रभावों से ईश्वर का आशीर्वाद प्रवाहित होता है। श्रोताओ, सच तो यह है कि जो व्यक्ति ईश नियमों पर मनन चिंतन करते हैं, वे कभी भी पर स्त्री के प्रलोभन में नहीं पड़ते। इसलिए यह आवश्यक है कि व्यक्ति ईश्वर पर श्रद्धा रखे और ईश नियमों पर चिंतन कर उन्हें अपने जीवन पर अमल करे। वह अपने वैवाहिक और दाम्पत्य जीवन में सुख खोजे, उसी स्त्री में सुख खोजे जिसके साथ उसने विवाह रचा है। व्यभिचारिणी के प्रति मोहित होने से बचे और पर स्त्री को कदापि गले न लगाए, क्योंकि सूक्ति ग्रंथ का लेखक आगे 5वें अध्याय के 20 से लेकर 23 तक के पदों में कहता है, पुत्र क्यों तुम व्याभिचारिणी पर मोहित होते हो, क्यों तुम पर स्त्री को गले लगाते हो। प्रभु प्रत्येक के आचरण का निरीक्षण करता और सभी मार्गों की जांच करता है। दुष्ट अपने ही कुकर्मों के जाल में फंसता है, वह अपने ही पापों के बंधनों से बंधता है। वह अनुशासन की कमी से मर जाएगा, उसकी अपनी मूर्खता उसका विनाश कर देगी। श्रोताओं, यौन इच्छाओं की तृप्ति के लिए प्रभु ईश्वर ने विवाह में पुरुष और स्त्री के साथ का प्रबंध किया है, इसलिए पत्नी के होते हुए किसी दुराचारिणी का रुख करना पुरुषों की बेवकूफी है। पुरुष इस भ्रम में पड़े रहते हैं कि यदि उनका नाजायज रिश्ता सार्वजनिक नहीं हुआ तो उन्हें किसी बात का खतरा ही नहीं है, जबकि सुलेमान स्मरण दिलाते हैं कि प्रभु प्रत्येक के आचरण का निरीक्षण करता और उसके सभी मार्गों की जांच करता है। विवाह संस्कार का उल्लंघन करने वालों को सूक्ति ग्रंथ में दुष्ट कहा गया है, जो अपने ही जाल में फंस जाता है। दुष्ट अपने ही जाल में फंसता, उसमें अनुशासन नहीं होता, वह अपनी वासनाओं को रोक नहीं पाता और यही उसे विनाश के गर्त में डाल देता है। और अब आइए सूक्ति ग्रंथ के 6वें अध्याय पर गौर करें। 35 पदों वाले इस अध्याय में जमानत की जोखिम और आलस के प्रति पाठकों को सचेत कराया गया है। साथ ही इसमें एक बार फिर दुष्ट की अंतगति का स्मरण दिलाते हुए लेखक व्यभिचार के विरुद्ध सावधान करता है। वस्तुतः इस अध्याय में लेखक कहता है कि ईश्वर 7 चीजों से घृणा करते हैं, जो हैं घमंडी आंखें, झूठ बोलने वाली जीभ, निर्दोष लोगों का लहू बहाने वाले हाथ, बुराई करने वाला मन, बुरे काम करने के लिए दौड़ते पांव और वे लोग जो गवाही देते हुए झूठ बोलते हैं, साथ ही वे लोग भी जो परिवार में कलह मचवाते हैं। 6वें अध्याय के प्रथम 5 पद इस प्रकार हैं, पुत्र यदि तुमने अपने पड़ोसी की जमानत दी है, यदि तुमने किसी पराये व्यक्ति के लिए जिम्मेवारी ली है, यदि तुम अपनी प्रतिज्ञा के जाल में फंसे हो, यदि तुम अपने ही शब्दों में बंध गए हो, तो तुम मुक्त होने के लिए यह करो। पुत्र तुम अपने पड़ोसी के हाथ में पड़ गए हो, इसलिए तुम जाकर उससे अनुरोध करते रहो। तुम अपनी आंखों में नींद नहीं आने दो, अपनी पलकों को झपकी मत लेने दो। तुम हरिण की तरह शिकारी के जाल से, पक्षी की तरह बहेलिए के फंदे से अपने आप को छुड़ाओ। श्रोताओं, यह बाइबल में निहित ईश्वर के वचन की महानता ही है, जो हमें न केवल स्वर्ग के बारे में, दूसरी दुनिया यानी कि परलोक के बारे में दिव्य ज्ञान देता है, बल्कि इस दुनिया के लिए मानवीय विवेक भी सिखाता है कि हम अपने मामलों को विवेक और सूझबूझ के साथ सोच समझ कर व्यवस्थित करें। लेखक किसी को जमानत देने की जोखिम उठाने के विरुद्ध सचेत करता है, क्योंकि ऐसा कर हम खुद अपना चैन और आराम खो बैठते हैं। हमें रातों में नींद नहीं आती, क्योंकि जिस व्यक्ति के लिए हमने जिम्मेदारी ली है वह उतना जिम्मेदार नहीं है, और इसके कारण हम अपने ही घर और परिवार में गरीबी और बर्बादी को बुलाते हैं। सच ही तो है, एक बार शिकारी के जाल में फंस जाने के बाद हरिण का जाल से निकलना और पक्षी का बहेलिए से निकलना मुश्किल ही होता है। श्रोताओ, कई बार हम बिना सोचे समझे ऐसे व्यक्तियों की जिम्मेवारी अपने ऊपर ले लेते हैं जिन्हें हम जानते तक नहीं, और उन्हें अपना वचन दे देते हैं। वचन देते ही हम उनके ऋणी हो जाते हैं और अपनी बेवकूफी के कारण ही ईश्वर के न्याय से भी वंचित हो जाते हैं। यह सोचना कि शब्द हवा की तरह है हमारा भ्रम है, क्योंकि शब्द प्रायः फंदे बन जाते हैं। तथापि श्रोताओं, सूक्ति ग्रंथ के उक्त पदों का गलत अर्थ न लगाया जाए। किसी की जमानत देना, किसी के लिए गारंटी देना कोई गलत काम नहीं है, यह उदारता का ही काम है, इसमें बेवकूफी की कोई बात नहीं। संत पॉल ने भी ओनेसिमुस के लिए क्षमा याचना करते हुए फिलिमेन को लिखे पत्र में कहा था, यदि आपको ओनेसिमुस से कोई हानि हुई है या इस पर आपका कुछ कर्ज है तो मेरे खर्चे में लिखें। हम किसी की मदद अवश्य कर सकते हैं, बशर्ते कि हम उसकी ईमानदारी से वाकिफ हों। हमारे शब्द किसी के लिए गारंटी बने। इसके लिए गारंटी पाने वाले को भी स्वीकार करना होगा कि वह हमारा कर्जदार है, और ऐसा आचरण करना होगा कि उसे दी गई गारंटी या जमानत देने वाले के परिवार में वह अशांति का कारण न बने।
तेरे ही अंश है सभी ये आसमां, ये जमीन, ये जीवन भी तेरी कृपा है, तेरी दया से धरती थमी।
संत पापा फ्रांसिस 2 से 6 दिसंबर तक साइप्रस और ग्रीस के लिए अपनी 35वीं प्रेरितिक यात्रा पर हैं। वाटिकन प्रेस कार्यालय के अनुसार संत पापा फ्रांसिस ने अपनी प्रेरितिक यात्रा साइप्रस और ग्रीस को माता मरियम की सुरक्षा में सौंप दिया। संत पापा बुधवार दोपहर को अपने व्यस्त कार्यक्रम में से कुछ समय निकालकर संत मरिया मेजर महागिरजाघर का दौरा किया। वहां उन्होंने बोर्गीस प्रार्थनालय में सालुस पोपोली रोमानी, रोमवासियों के संरक्षिका माता मरियम के प्राचीन रोमन आइकन के चरणों में प्रार्थना की। उन्होंने वेदी पर फूलों का एक गुलदस्ता भी रखा। संत पापा फ्रांसिस साइप्रस और ग्रीक की प्रेरितिक यात्रा के लिए गुरुवार 2 दिसंबर को रोम के समय अनुसार पूर्वाह्न 10 बजे वाटिकन से रोम के फ्यूमिचिनो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए रवाना हुए। वाटिकन में शरणार्थियों का एक समूह संत पापा को विदा दिया। ये शरणार्थी सीरिया, कांगो, सोमालिया और अफगानिस्तान के रहने वाले हैं, और उनके साथ संत पापा की ओर से परम धर्म पीठीय कोष के दानदाता कार्डिनल कॉनराड क्रेजेस्वी की भी थे। उपस्थित लोगों में से कई ने इटली की यात्रा करने से पहले लेस्बोस में मोरिया प्रवासी शिविर में समय बिताया। उनमें से कुछ ऐसे भी थे जिन्हें संत पापा फ्रांसिस ने अप्रैल 2016 में लेस्बोस के दौरे के बाद अपने साथ विमान में रोम लाए थे। वाटिकन प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार फ्यूमिचिनो पहुंचने से पहले संत पापा फ्रांसिस दूतों की संत मरियम पल्ली गए। वहां उन्होंने लोरेटो की माता मरियम की प्रतिमा के सामने कुछ देर प्रार्थना की। संत पापा ने पल्ली द्वारा मेजबानी किए गए करीब 15 शरणार्थियों से मुलाकात की। संत पापा पूर्वाह्न 11 बजे फ्यूमिचिनो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से अल इतालिया A320 विमान द्वारा साइप्रस के लार्नाका अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के लिए रवाना हुए। साइप्रस जाने के मार्ग में उन्होंने इटली और ग्रीस के ऊपर से गुजरते हुए देशों को तार संदेश दिया। संत पापा ने इटली के राष्ट्रपति सेर्जो मत्तरेला को तार संदेश में संबोधित कर कहा, माननीय राष्ट्रपति महोदय, मैं साइप्रस और ग्रीस की प्रेरितिक यात्रा के लिए इटली क्षेत्र को छोड़ रहा हूं। मैं उस तीर्थयात्री के समान हूं जो प्राचीन स्रोतों के लिए तरसता है, विश्वास के साथ और स्थानीय लोगों से मिलने की इच्छा रखता हूं। माननीय राष्ट्रपति महोदय, मैं आपको और इटली वासियों का अभिवादन करता हूं, जो मेरी प्रेरितिक यात्रा में अपनी शुभकामनाओं द्वारा मेरा साथ देते हैं। मैं आप पर और पूरे देशवासियों पर ईश्वर की आशीष, शांति और आपसी सहयोग की कामना करता हूं। ग्रीस के ऊपर से गुजरते हुए संत पापा फ्रांसिस ने ग्रीस के राष्ट्रपति माननीय कतरीना साकेला रोपोलू को तार संदेश भेजा। संदेश में संत पापा ने लिखा, जब मैं साइप्रस की अपनी प्रेरितिक यात्रा के दौरान ग्रीस के ऊपर से उड़ान भर रहा हूँ, तो मैं आपको और सभी देशवासियों को प्रार्थनाओं के साथ शुभकामनाएं देता हूँ। आपके देश में मेरी अगली यात्रा का बड़ी खुशी से इंतजार है। मैं आप सभी पर ईश्वर के आशीर्वाद की कामना करता हूँ। विमान में संत पापा फ्रांसिस ने सभी पत्रकारों को अभिवादन किया। 3 घंटों की विमान यात्रा के उपरांत अल इटालिया A320 विमान साइप्रस के लार्नाका अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पहुंचा। इस देश में संत पापा फ्रांसिस की यह पहली और इटली से बाहर उनकी 35वीं प्रेरितिक यात्रा है। हवाई अड्डे पर विमान के रुकते ही साइप्रस के प्रेरितिक राजदूत महाधर्माध्यक्ष अडोल्फो टीटो यलाना और प्रोटोकॉल के प्रमुख श्री जॉर्ज प्लासिडियस दोनों संत पापा फ्रांसिस का स्वागत करने के लिए विमान में प्रवेश किए। विमान के सामने की सीढ़ी के नीचे संसद भवन के अध्यक्ष ने संत पापा का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। पारंपरिक पोशाक में 3 बच्चों ने फूलों का गुलदस्ता भेंट करते हुए संत पापा फ्रांसिस का स्वागत किया। हवाई अड्डे में संत पापा फ्रांसिस का आधिकारिक स्वागत किया गया। साइप्रस की प्रेरितिक यात्रा का प्रतीक चिन्ह उस भूभाग का मानचित्र संत पापा फ्रांसिस की तस्वीर और बर्नाबास को प्रस्तुत करता है। वे उस भूमि के संरक्षक माने जाते हैं। वे संत पौलुस के साथी थे। जैतून की डाली एवं गेहूं की बाली को एक साथ बांधा गया है, जो शांति एवं मित्रता का प्रतीक है। संत पापा फ्रांसिस की प्रेरितिक यात्रा का आदर्श वाक्य है विश्वास में एक दूसरे को सांत्वना देना, जो संत बर्नाबास के नाम के अर्थ सांत्वना के पुत्र की याद दिलाता है। संत पापा 2 से 4 दिसंबर साइप्रस की राजधानी निकोसिया में बिताएंगे। आज शाम 4 बजे वे निकोसिया में कृपा की माता मरियम मैरोनाइट महागिरजाघर में पुरोहितों, धर्म बहनों, प्रतिष्ठित व्यक्तियों, डीकनों, प्रचारकों और कलीसियाई संघों के सदस्यों के साथ मुलाकात कर उन्हें अपना संदेश देंगे। शाम 5:15 पर निकोसिया के राष्ट्रपति भवन में संत पापा फ्रांसिस का औपचारिक स्वागत समारोह होगा। इसके बाद राष्ट्रपति के साथ शिष्टाचार भेंट होगी और स्थानीय अधिकारियों, नागर समाज और राजनयिक कोर के साथ बैठक होगी। उनके कार्यक्रम में शुक्रवार को निकोसिया के JSP स्पोर्ट्स स्टेडियम में पवित्र मिस्सा समारोह और पवित्र क्रूस पल्ली के गिरजाघर में प्रवासियों के साथ एक एकतावर्धक प्रार्थना भी शामिल है। संत पापा फ्रांसिस अपनी यात्रा के दूसरे चरण के लिए शनिवार को साइप्रस से एथेंस ग्रीस के लिए रवाना होंगे। वहां वे सोमवार तक रहेंगे। ग्रीस में उनकी यात्रा का एक आकर्षण लेस्बोस द्वीप में माइटिलीन शहर में स्वागत और पहचान केंद्र में प्रवासियों के साथ उनकी मुलाकात होगी। संत पापा फ्रांसिस ने 2016 में यूरोपीय प्रवास संकट के दौरान ऑर्थोडॉक्स प्रातिधर्माध्यक्ष बार्थोलोमियो प्रथम के साथ द्वीप की यात्रा की थी और वहां से संत पापा विमान पर 12 प्रवासियों के साथ वाटिकन लौटे थे। प्रवासियों की दुर्दशा एक बार फिर उनके एजेंडे में है। साइप्रस और ग्रीस दोनों देशों में होने वाले कार्यक्रम के तहत संत पापा फ्रांसिस प्रवासियों के प्रति अपनी एकजुटता और निकटता व्यक्त करेंगे। ग्रीस की यात्रा के दौरान संत पापा एथेंस की ऑर्थोडॉक्स कलीसिया के महाधर्माध्यक्ष इरोनिमोस द्वितीय के साथ मिलेंगे। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।